وہ محمد آگے جواب دیتا ہے، حضرت آپ نے فرمایا تھا قرآن پاک حفظ کر کے آؤ، میں ایک ہفتے میں پورا قرآن مجید حفظ کر کے واپس آ گیا ہوں۔ یہ وہ بچہ تھا جو آنے والے وقت میں امام محمد کہلائے، امام شافی کے استاد بنے۔ امام شافی ان کی بڑی تعریفیں کرتے تھے، بدن کے ذرا فربہ تھے، موٹے تھے، تو امام شافی رحمۃ اللہ اپنے استاد کی تعریف یوں بیان کرتے تھے، فرماتے تھے کہ میرے استاد کے اندر تین خوبیاں تھیں، جب کسی مجلس میں آتے تھے تو ان کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ دیکھنے والے کی آنکھیں بھر جاتی تھیں، جب بیٹھتے تھے تو جگہ کو بھر دیا کرتے تھے، اور جب بولتے تھے تو سننے والے کے دماغ کو علم کے نور سے بھر دیا کرتے تھے۔ ایک اور امیر زادہ تھا، اس کا نام تھا عبداللہ۔ اس کی ابتدائی زندگی بڑی غفلت میں گزری، کیونکہ وہ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا تھا، امیر باپ کا بیٹا تھا، پیسے کی فراوانی تھی، تو پھر بندہ فتنے میں پڑ جاتا ہے۔ ماں باپ اس کے لیے بڑی دعائیں کرتے، مگر وہ اپنے ہم عمر دوستوں میں جوانی والے کاموں میں مصروف رہتا۔ ماں باپ دعائیں کرتے رہتے کرتے رہتے، عزیز طلباء یہ بات سمجھنا کہ جب ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں نا، وہ رائے گاہ نہیں جاتی، اللہ ان کو بالآخر قبول فرما لیتے ہیں۔ چنانچہ ماں باپ کی دعائیں قبول ہوئیں اور عبداللہ کے دل میں زندگی کو بدلنے کی خواہش پیدا ہوئی، تو عبداللہ نے اپنے والد کو کہا کہ ابو جان، میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی تجارت کروں۔ والد نے اس زمانے میں 30,000 اشرفیاں ان کو دیں، اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ تجارت کرے گا تو کم از کم یہ بری محفل سے تو بچے گا اور زندگی کچھ نیکی کی طرف آ جائے گی۔ عبداللہ نے وہ 30,000 اشرفیاں لیں اور سفر پہ چل پڑے۔ سوچا کیا کروں، دل نے کہا کہ جا کے علم حاصل کرتا ہوں، ایک عالم کے پاس، دوسرے عالم کے پاس، تیسرے عالم کے پاس۔ اب ان کا یہی کام بن گیا، بڑے بڑے علماء کے پاس جاتے، ان سے علم حاصل کرتے۔ 2 سال لگا دیے، 2 سال کے بعد پھر واپس گھر آئے۔ والد نے پوچھا، بیٹا تم 30,000 اشرفیاں لے کر گئے تھے تجارت کرنے کے لیے، تو کیا تجارت کر کے آئے؟ اس وقت بتایا کہ ابو جان، میں نے وہ تجارت کی ہے جس میں نقصان کا اندیشہ نہیں ہے، میں نے ان 30,000 اشرفیوں کے بدلے دین کا علم حاصل کیا ہے۔ تو باپ کو خوشی ہوئی، اور باپ نے پھر 20,000 اشرفیاں اور دی کہ بیٹا جاؤ اور علم حاصل کرو۔ آج ہم اپنے استادوں کی فہرست گننا چاہیں نا، تو میرے اندازے میں ہم نے کوئی 200 استادوں سے زندگی بھر علم حاصل کیا ہوگا، چاہے وہ دین کا علم تھا، چاہے وہ کالج یونیورسٹی کا تھا، ٹوٹل 200 استاد ہوں گے جن سے ہم نے پڑھا ہوگا، اور زیادہ سمجھ لیں تو 300 استاد ہو جائیں گے۔ اور یہ ایسے تھے بزرگ عبداللہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 4,000 محدثین سے علم حاصل کیا، 4,000 اساتذہ سے علم حاصل کیا، اور پھر یہ آ کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد بنے، خوب رنگ چڑھا ان کے اوپر، ایسا رنگ چڑھا کہ اسماء الرجال کی کتب میں جتنے تعریفی الفاظ ان کے بارے میں کہے گئے ہیں، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ اتنے الفاظ تو امام بخاری کے لیے بھی استعمال نہیں کیے گئے۔ ان کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا تھا۔ ان کے ایک درس میں 40,000 سے زیادہ طلباء ہوتے تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ 40,000 طلباء ان سے بیٹھ کر حدیث کا درس سنا کرتے تھے۔ اتنی بڑی کلاس آپ نے کسی مدرسے میں دیکھی؟ آج تو دور حدیث کے بچے ہوں تو وہ 100, 200, 400، عام مدارس کا تو یہی معیار ہے نا۔ بڑے بڑے جو مدارس ہیں جیسے دارالعلوم دیوبند ہے، تو तो वहां 1,500 तलबा होते हैं, 2,000 तलबा होते हैं। हमें बांग्लादेश जाने का मौका मिला तो वहां पर एक मदरसा है 8,000 का, वहां पे तलबा बहुत ज्यादा। मैंने पूछा दौरे हदीस में कितने तलबा हैं, कहने लगे जी दौरे हदीस में 4,000 तलबा हैं। और उन्होंने बयान करवाया तो दारुल हदीस में नहीं, मस्जिद में करवाया, और पूरी मस्जिद भरी हुई थी, और ये सिर्फ दौरे हदीस के तलबा थे, बाकी तलबा इसके अलावा थे। तो मुझे ऐसे बात समझ में आई कि इस वक्त शायद दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा मदरसा यही है। फिर उलमा ने भी तस्दीक की कि वाकई वहाँ तलबा बहुत होते हैं। तो आज की दुनिया में जो इल्मी दुनिया है और लोग दूर दूर से आते हैं मदरसों में पढ़ने के लिए, तो तलबा की तादाद 4,000, और इमाम अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह के पास 40,000 तलबा होते थे। उनके एक दोस्त थे, उनका नाम था इस्माइल रहमतुल्लाह। वो फरमाते हैं कि मैं बड़ा हैरान होता था कि जिन उस्तादों से अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने पढ़ा, हमने भी उन्हीं उस्तादों से पढ़ा है, जितना इल्म इनके पास है उतना इल्म तो हमारे पास भी है, मगर तलबा का रुजू उनकी तरफ था, हमें पूछते ही कोई नहीं। तो वो कहते हैं कि मैं बड़ा इस पर सोचता रहा आखिर फर्क क्या है। तो फिर मुझे बाद में बात समझ में आई कि अब्दुल्ला इब्न मुबारक के दिल में जो खशियत इलाही थी वो बहुत ज्यादा थी बजाय जो हमारे दिलों में थी। वो फरमाते हैं कि मैंने 2 साल अब्दुल्ला इब्न मुबारक की जिंदगी को बहुत करीब से देखा, और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अब्दुल्ला इब्न मुबारक और सहाबा कराम में सिर्फ एक फर्क था, सहाबा की जिंदगियों में और अब्दुल्ला इब्न मुबारक की जिंदगी में सिर्फ एक फर्क था कि सहाबा कराम को तो नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की सआदत नसीब थी, अब्दुल्ला इब्न मुबारक को वो सआदत नसीब नहीं थी। इसके अलावा अब्दुल्ला इब्न मुबारक और सहाबा की जिंदगी में मुझे कोई फर्क नजर नहीं आया। ऐसी जिंदगी जिनकी हो कि उनकी जिंदगी को देख के सहाबा की जिंदगी का गुमान गुजरे, वो कैसे अच्छे इंसान होंगे। और ये इमाम आज़म अली फरहमतुल्लाह की जो मस्जिद मजलिस शुरा थी 40 बंदों की, उनमें से एक थे, नवाब के बेटे थे, अल्लाह ने इल्म की तलब दिल में डाल दी और फिर इन्होंने मुजाहिदे उठाए। हज़रत साहब में एक वाक़ लिखा है कि हारून रशीद का एक बेटा था, शहजादा था, मगर उसके दिल में अल्लाह को पाने की लौ लग गई थी, तो वो महल के अंदर भी बहुत सादगी की जिंदगी गुजारता था। बादशाह के दोस्त समझते थे कि ये मेंटल केस है कोई, तो वो बादशाह को कहते कि आप इसका क्यों नहीं इलाज करवाते, क्यों नहीं इसको समझाते। तो एक दिन हारून रशीद ने उसको कहा कि बेटा तुम्हारी वजह से मुझे दोस्तों की बातें सुननी पड़ती है, जलील होना पड़ता है। उसने कहा अब्बा जान अगर मेरी वजह से आपको जलील होना पड़ता है ना, तो मैं फिर आज यहाँ से चला जाता हूँ, मैं इल्म हासिल करता हूँ। ये शहजादा वहां से एक बस्ती में गया जहां उलमा थे, और वहां जाकर एक मस्जिद में अपनी रिहाइश रख ली इतकाफ की नीयत से। हफ्ते में ये 6 दिन क्लासें लेता था, और जब एक दिन मदरसे में छुट्टी होती थी तो उन दिनों में ये मजदूरी करता था, और मजदूरी में जो कुछ कमाता था 24 घंटे में एक वक्त इसको एक रोटी मिलती थी। आप सोचिए कि बादशाह का बेटा हो, महल की जिंदगी को छोड़कर वो मजदूर की जिंदगी इख्तियार कर रहा है, और 24 घंटे में सिर्फ एक मर्तबा खाना खाता है, वो भी एक रोटी। तफसीली वाकया तो बहुत लंबा है। एक आदमी ने उससे अपना मकान बनवाया, वो कहते हैं कि मैं मजदूर लेने गया तो मैंने देखा कि एक आदमी बैठा है और कुरान पढ़ रहा है, मगर जगह वो मजदूरों की थी। तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुम मजदूर हो, उसने कहा हाँ। लकद खलकनल इंसान फी कबद, तहकीक हमने इंसान को मुशक्कत के लिए पैदा किया, हम सब मजदूर हैं। तो मैंने कहा मजदूरी करोगे, उसने कहा बिल्कुल करूंगा, इसलिए तो बैठा हूं यहां। मैंने कहा आओ मेरे साथ। कहने लगा मेरी दो शर्तें हैं, एक तो मजदूरी के दौरान नमाज का जब वक्त आएगा मैं तसल्ली की नमाज पढ़ूंगा, आपने मुझे इतराज नहीं करना कि ज्यादा वक्त क्यों लगा रहे हो। मैंने कहा मुझे मंजूर है। दूसरी बात उसने कही कि मैं एक दिन मजदूरी करूंगा तो आपसे इतने दिरहम लूंगा, ना इससे ज्यादा लूंगा ना इससे कम लूंगा। मैंने कहा ये बात क्यों कह रहे हो। कहने लगे कि कम लेने में ये मसला है कि मैं जो दिरहम लूंगा उससे मैं 6 रोटियां खरीदूंगा और रोजाना 1 रोटी खाया करूंगा और मेरे 6 दिन आने वाले गुजर जाएंगे, फिर मजदूरी का दिन आएगा, फिर मजदूरी करके इतने ही पैसे लूंगा और 1 हफ्ता और गुजार दूंगा। मैंने कहा कि ज्यादा क्यों नहीं लोगे। कहने लगा मुझे जमा करके रखने की क्या जरूरत है। मैं उसको ले आया। अब उसने जब मकान बनाया, दीवार बनाई, तो जो आम मजदूर बनाते थे ना उससे दुगनी मिकदार में तादाद दीवार बना दी। वो कहते हैं मैं बड़ा हैरान हुआ और मैंने सोचा कि मैं बाकी मकान भी इसी से बनवाऊंगा। मैंने छुप के देखा तो वो मजदूर जो दीवार बना रहा था ना उसके वक्त में बरकत थी, वो ईंट उठाता और दीवार के लिए रखता, तो हमारे आम मेसन जो होते हैं वो तो ईंट को रखते हैं फिर उसको सीधा करते हैं फिर ठक ठक करके टिकाते हैं फिर दूसरी ईंट, उनको टाइम ज्यादा लगता है। ये ऐसा मजदूर था कि ये ईंट उठा के रखता था और ईंट बिल्कुल सही अपनी जगह पर टिक जाती थी, इसलिए तेजी से काम करता जाता था। तो मैंने जब ये बरकत देखी तो मैंने फैसला किया कि मैंने पूरा मकान इसी से बनवाना है। पर मुझे पता चला कि ये तो हफ्ते में सिर्फ 1 दिन काम करता है, तो मैंने अपना काम बंद करवा दिया और 1 हफ्ता इंतजार किया कि अगले हफ्ते जब ये बच्चा फिर काम के लिए आएगा मैं इसी से मकान बनवाऊंगा। जब काम का दिन आया तो मैं गया जहां से उसने मिलना था, तो एक और मजदूर मिला। उसने मुझे बताया जी कि वो आज मजदूर नहीं आया। मैंने पूछा वजह क्या बनी। उसने कहा कि फलां मस्जिद में वो रहता है और उसको तेज बुखार है और वो काम करने के काबिल नहीं है। मेरे दिल में एक मोहब्बत का जज्बा पैदा हो गया था। मैंने कहा चलो मैं जाके उसकी तवा पुरसी करता हूं। मैं उस मस्जिद में चला गया तो मैंने देखा कि वो नौजवान चटाई के ऊपर लेटा हुआ है और सर के नीचे उसने एक ईंट रखी हुई है, उसका तकिया बनाया हुआ है। वक्त का बादशाह का बेटा हो और वह चटाई के ऊपर लेटे और सर के नीचे ईंट को तकिए के तौर पर इस्तेमाल करे। कहते मैं करीब हुआ तो उसका जिस्म तो बहुत गर्म था, मैंने उसके सर को अपनी गोद में रख लिया और मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें अपने घर ले जाता हूं, तुम्हारा इलाज करवाऊंगा हत्ता कि तुम सेहतमंद हो जाओगे। उसने आगे से जवाब दिया कि मुझे लगता है कि मेरा आखिरी वक्त करीब है, अगर तुम मुझसे कोई हमदर्दी करना चाहते हो तो जब मेरी रूह निकल जाए तुम मेरी 2 चीजें हारून रशीद के जाके हवाले कर देना, वक्त के बादशाह के। वो क्या चीजें थी? एक अंगूठी थी और एक कुरान मजीद था। जब उसकी वफात हुई तो मैंने उसको नहलाया, कफनाया, नमाज जनाजा पढ़ा के दफन कर दिया। अब मैं कुरान मजीद और अंगूठी लेके चला कि मैं बादशाह को पेश करता हूं। इस तरह मुझे थोड़ा थोड़ा ख्याल तो आया कि सुना है कि बादशाह का एक बंदा बेटा दीवाना है, मेंटल केस है, कहीं ये वही बच्चा तो नहीं है। लेकिन खैर मैं शहर पहुंचा तो हारून रशीद ने कहीं जाना था और पुलिस रास्ता बनवा रही थी। मैं इंतजार में खड़ा हो गया। जब हारून रशीद की सवारी वहां से गुजरने लगी तो मैंने हारून रशीद को वो कुरान मजीद और अंगूठी दूर से दिखा दी, तो हारून रशीद समझ गया कि बेटा जब घर से गया था उसकी वालदा ने उसको ये 2 चीजें दी थी, बेटा तुम कुरान मजीद को पढ़ा करना तुम्हें माँ याद आएगी और जरूरत पड़े तो अंगूठी बेच देना तुम्हें सफर के खर्चे में कमी काम आ जाएगी। तो हारून रशीद ने पुलिस को इशारा किया कि इस बंदे को मेरे साथ ले आओ महल में। वो बंदा कहते हैं जब मैं महल में गया तो मुझे पुलिस वाले इंचार्ज ने कहा कि देखो बादशाह बहुत गमजदा नजर आता है, तो प्लीज आपने जहां चार बातें करनी है ना तो उसकी जगह तीन करना, और अगर तीन करनी है तो उसकी जगह दो बातें करना, और अगर आपने दो बातें करनी है तो एक ही बात कर देना, बात को समेट के आ जाना, बादशाह के गम को ज्यादा ना बढ़ाना। मैंने कहा बहुत अच्छा। फिर उसके बाद मुझे हारून रशीद के पास जो है ना वो पहुंचा दिया गया, तो हारून रशीद मुझे कहने लगा कि ए अजनबी मुझे लगता है तू मेरे लिए कोई गम की खबर लाया है। तो मैंने कहा कि एक नौजवान था जिसने मेरे घर में मजदूरी की थी और उसने ये अमानत मुझे दी कि जाके हारून रशीद को बता देना। तो हारून रशीद ने कहा अच्छा तुमने शहजादे से अपने घर में मजदूरी करवाई। मैंने कहा बादशाह सलामत मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये शहजादा है, मैं क्यों उससे मजदूरी करवाता। तो हारून रशीद ने रोना शुरू कर दिया और कहा कि बेटे तू अपने बाप से ज्यादा अकलमंद निकला, मैं तो दुनिया के कामों में उलझा हुआ हूं और तूने अपनी आखिरत की तैयारी की और अपने रब के पास पहुंच गया। तो इन तलबा में वक्त के शहजादे और अमीरजादे भी हुआ करते थे और गरीब लोगों के बच्चे भी होते थे। गरीब लोगों के बच्चों का ये हाल था कि इमाम ज़ाहबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं 20 साल की उम्र में अपने घर से इल्म की तलब के लिए निकला और 7 साल में मैंने इल्म हासिल किया और फिर वापस आकर अपने वालिदैन की शक्ल को देखा। 7 साल में घर वापस ही नहीं आए, वहीं रहे। अब आप बताइए आज के तलबा तो एक हफ्ते के बाद गुजारा नहीं होता जी, घर जाए अपने वालिदैन को मिले, भाइयों को मिले, वो 7 साल के बाद आते। इमाम तिब्रानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मुझे इल्म हासिल करने में 30 साल लगे। कितने साल लगे? 30 साल लगे। और वो फरमाते हैं कि इन 30 सालों में मेरे पास कोई बिस्तर नहीं था, मैं मस्जिद की चटाई के ऊपर लेट जाता था और रोल करता था, बस उस सफ के अंदर जो लिपट जाता था यही मेरा बिस्तर होता था। जिसम तो सर्दी से बचता था लेकिन सर और पांव को सर्दी लगती रहती थी। मैंने जिंदगी के 30 साल इस तरह गुजारे कि मेरे पास कोई बिस्तर ही नहीं था। इमाम तिब्रानी रहमतुल्लाह अपना वाक्य लिखते हैं, फरमाते हैं कि हम 3 दोस्त थे, अबू शेख और तिब्रानी और मुकरी। मस्जिद नबी में इल्म हासिल करते थे। हमारे पास खाना पीना खत्म हो गया, भूख से बहुत बुरा हाल। मैं नकाहत की वजह से मस्जिद नबी में लेटा हुआ था, अचानक मुझे ख्याल आया कि मैं मस्जिद नबी का तालिब इल्म हूं, मैं नबी अलैहिस्सलाम का मेहमान हूं, मैं जाकर नबी अलैहिस्सलाम को अर्ज तो करूं कि मैं आपका मेहमान हूं और मुझे भूख लगी हुई है। तिब्रानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये ख्याल आने के बाद मैं मुआजे शरीफ हाजिर हुआ, नबी अलैहिस्सलाम पे सलातुस्सलाम पेश किया और सलातुस्सलाम पेश करने के बाद ये अल्फाज कहे या रसूलल्लाह अलजू, ए अल्लाह के रसूल सब मुझे बहुत भूख लगी है। ये अल्फाज कह के मैं कदमैन की तरफ से बाहर निकल आया। जैसे मैं दरवाजे पर निकला एक आदमी मेरा नाम पुकार रहा था, तिब्रानी तिब्रानी तिब्रानी। मैं बड़ा हैरान, यहां तो कोई मेरा वाकिफ भी नहीं है तो ये मेरा नाम कैसे पुकार रहा है। मैंने उस अरबी से पूछा कि तुम मेरा नाम कैसे पुकार रहे हो। उसने कहा कि देखो मस्जिद नबी की दीवार और मेरे घर की दीवार एक है, मैं मस्जिद नबी का पड़ोसी हूं। मैं अपने घर में दोपहर के वक्त कैलूला कर रहा था, मुझे ख्वाब में नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई और अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि मस्जिद में एक तालिब इल्म है जो भूखा है, उसका नाम तिब्रानी है, तुम उसे खाना खिलाओ। अब जैसे ही मेरी आंख खुली, मैंने अपनी बीवी को ख्वाब सुनाया। उसने कहा ये मैंने सालन बनाया है और ये रोटियां पकाई हैं, ये जाके पहले तालिब इल्म को खिलाओ, हम अपने लिए और खाना बना लेंगे। तो मैं घर से रोटियां और सालन लेके निकला हूं और आपका नाम पुकार रहा हूं कि नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया है कि मैं आपको खाना खिलाऊं। इन तलबा के साथ अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी मोहब्बत। अगर उनके मुजाहिदों के वाकयात सुनाने शुरू करें ना तो शायद पूरी रात ही बीत जाए, वाकयात खत्म नहीं होंगे। बस एक वाकया सुना के मैं अपनी बात को मुकम्मल करता हूं। उंदलस का एक तालिब इल्म था। किसी जमाने में उंदलस मुसलमानों का बड़ा मरकज रहा है, कुर्तबा। इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह वहीं के थे। तो वहां पे एक तालिब इल्म था, उसका नाम था बकीउद्दीन इब्न मुखल्लद रहमतुल्लाह। ये वाकया इमाम ज़ावी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब सीर एलामुन नुबला में लिखा है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। तो वो बकीउद्दीन इब्न मुखल्लद रहमतुल्लाह अपने बारे में कहते हैं कि मुझे पता चला कि बगदाद में इमाम अहमद बिन हम्बल बड़े फकीह हैं और मुहद्दिस हैं, और वो इल्म का ऐसा समुंदर है कि जो तालिब इल्म जाता है वो इल्म से अपनी प्यास बुझाता है। तो मेरे दिल में शौक पैदा हुआ कि मैं भी जाऊं और उनसे इल्म हासिल करूं। उसके लिए मैं अपने घर से एक गठरी में सामान लेकर निकला और मैंने एक कश्ती किराए पे ली, क्योंकि रास्ते में समुंदर पड़ता था। वो कहते हैं कि हम कश्ती में चले और कश्ती वाला रास्ता भूल गया, और समुंदर समुंदर हर तरफ समुंदर, हम तूफान में घिर गए। और तूफान में तो फिर 12-15 फुट ऊंची लहरें आती हैं और कश्ती जो है वो हिचकोले खाती रहती है। कहते हैं कि कश्ती हिचकोले खाती थी और हमें उल्टियां आती थी और हमारी तबीयत खराब, और ऐसे लगता था कि हम शायद खुश्क जमीन को दोबारा नहीं देख सकेंगे, कश्ती पानी में डूब जाएगी। बड़े दिनों के बाद बिल आखिर अल्लाह ने हम पर मेहरबानी की और कश्ती किनारे पर लगी। हम नीचे उतरे। मैंने पूछा लोगों से कि भाई बगदाद कहाँ है? उनका जनाब वो तो 700-800 मील दूर फला जगह पे शहर है। तो बकीउद्दीन कहते हैं कि मैंने अपनी गठरी अपने सर पे रखी और पैदल चलना शुरू कर दिया कि ये 600-700 मील का सफर तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, मैं पैदल तय कर लूंगा। अब आप सोचिए कि इल्म हासिल करने के लिए 700 किलोमीटर चल के उस्ताद के पास पहुंचना था। फरमाते हैं कि जब मैं बगदाद शहर के करीब पहुंचा तो मैं इतना थका हुआ था, इतना थका हुआ था, एक दरख्त के साये में मैंने अपनी गठरी सर से उतारी और मैं तो जमीन के ऊपर जैसे गिर जाता है कोई आगोश में चला गया। जब 2-4 घंटे सोने के बाद आंख खुली तो मैंने फिर गठरी सर पे उठाई और बगदाद शहर की तरफ चलना शुरू किया। रास्ते में मुझे एक बंदा मिला जो बगदाद शहर से आ रहा था। मैंने उसे सलाम किया और मैंने सलाम करके उससे पूछा कि आप इमाम अहमद बिन हम्बल के बारे में मुझे कुछ बता सकते हैं? उन्होंने कहा नौजवान उनके बारे में क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा कि मैं तो उदलस से चला हूं उनसे इल्म हासिल करने के लिए। उस बंदे ने ठंडी सांस ली और मुझे कहा कि ए नौजवान, तुम्हारी ये तमन्ना पूरी नहीं हो सकती। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा कि बादशाह वक्त इमाम अहमद बिन हम्बल से किसी बात पर नाराज हो गया और उसने उनको घर में नजरबंद कर दिया है। ना कोई बंदा इमाम साहब से मिल सकता है, ना इमाम साहब किसी बंदे से मिल सकते हैं, लिहाजा अब तुम उनसे इल्म हासिल नहीं कर सकते। बकीउद्दीन कहते हैं कि मेरे दिल पे चोट तो लगी, मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं चल पड़ा कि अच्छा पहुंचता तो हूं शहर में, अल्लाह कोई सूरत निकाल देंगे। शहर पहुंच के एक छोटी सी जगह थी, वो मैंने किराए पे ले ली, अपना सामान रखा और मैंने लोगों से पूछा कि भाई शहर में कहीं कोई हदीस का दर्स होता तो होगा ना, इतना बड़ा शहर है। लोगों ने कहा जामिया मस्जिद में यहिया बिन मोइन रहमतुल्लाह अलैह एक मुहद्दिस थे जो जरह और तादील के इमाम समझे जाते थे, उनका दर्स होता है असर के बाद। बकीउद्दीन कहते हैं कि मैं वहां पहुंच गया कि चलो किसी मुहद्दिस का दर्स हदीस सुनता हूं। यहिया बिन मोइन रहमतुल्लाह अलैह ने एक छोटी सी हदीस की तिलावत की और उसके बारे में दर्स दिया और फिर लोगों ने उनसे रावियों के बारे में पूछना शुरू कर दिया। वो चूंकि असमा और रिजाल के फन में इमाम थे, माहिर थे, हर रावी के हालात जानते थे, तो उन्होंने बताना शुरू कर दिया फलां रावी सिखा है, फलां रावी ठीक नहीं है, फलां ठीक नहीं है, फलां ठीक नहीं है, फलां ठीक नहीं है। तो बकीउद्दीन कहते हैं कि जब उन्होंने एक बंदे को जवाब दे दिया ना, तो मैं उठ के खड़ा हो गया और मैंने उनसे पूछा जी कि हिशाम इब्ने अमार के बारे में आप क्या कहते हैं। उन्होंने जवाब दिया वो हिशाम चादर वाले। मैंने कहा हाँ वही। उसने कहा वो इतने सिखा हैं कि उनके चादर के नीचे तकब्बुर भी आ जाए तो उनकी सकाहत में कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम उनसे हदीस की रिवायत कर सकते हो। जब उन्होंने मुझे जवाब दिया तो मैंने फिर दूसरा सवाल पूछना चाहा, मगर जो करीब लोग बैठे थे ना, उन्होंने मेरा कुर्ता पकड़ के खींचा और कहा कि भाई यहाँ का दस्तूर ये है, एक दिन में एक तालिबे इल्म एक सवाल पूछ सकता है, अगर एक ही सारे सवाल पूछेगा तो बाकी तलबा का क्या होगा। अब आपने एक सवाल पूछ लिया, बैठे हैं। कहते हैं कि मैंने रोना शुरू कर दिया और मैंने उनको बताया कि देखो मैं तो इतनी दूर से सफर की मशक्कतें उठा के यहाँ आया हूँ और मुझे इस तरतीब का पता नहीं था, अगर पता होता तो मैं वही सवाल पूछता जो मुझे असल पूछना था। लोगों ने मेरे ऊपर तरस खाया और कहा अच्छा तुम एक सवाल और पूछ लो। जब उन्होंने कहा ना कि एक सवाल और पूछ लो, तो मैंने यहिया बिन मोइन से पूछा आप इमाम अहमद बिन हम्बल के बारे में क्या कहते हैं। कहते हैं कि इस सवाल को सुन के पूरे मजमे पे खामोशी तारी हो गई, सांप सूंघ गया पूरे मजमे को। लोग समझते थे कि बादशाह वक्त उनसे नाराज है, उसने नजरबंद किया हुआ है, और मजमे में उनके बारे में सवाल पूछना तो अपने आप को अजाब को दावत देने के माने देना। मेरी बात सुन के यहिया बिन मोइन रहमतुल्लाह ने अपना सर झुका लिया, वो थोड़ी देर खामोश रहे, फिर उन्होंने अपना सर उठाया और एक ठंडी सांस ली और कहने लगे कि इमाम अहमद बिन हम्बल तो इमामुल मुस्लिमीन है। जब यहिया बिन मोइन रहमतुल्लाह ने यह कहा ना कि इमाम अहमद बिन हम्बल तो इमामुल मुस्लिमीन है, मेरे दिल में और तलब बढ़ गई कि मैंने तो उनसे इल्म हासिल करके ही रहना है। मजलिस खत्म हुई तो मैंने साथ वाले एक बंदे से कहा भाई मुझे इमाम अहमद बिन हम्बल का घर दिखा दो। तुमने कहा ना भाई ना, अगर पुलिस को शक हो गया ना तो तुम्हें भी कोड़े लगेंगे और मुझे भी लगेंगे, मैं क्यों अपने आप को तकलीफ में डालूं। मैंने कहा यार मुझे अपने साथ ले चलो। और जब इमाम अहमद बिन हम्बल के घर के करीब से गुजरना ना, तो आंख के इशारे से बता देना कि ये दाएं तरफ या बाएं तरफ इमाम अहमद का घर है, मैं उस घर के दरवाजे को पहचान लूंगा, फिर मैं जानू मेरा काम जाने, बस आप आगे चले जाना। इस पे वो बंदा तैयार हो गया और उसे मुझे इमाम अहमद बिन हम्बल के घर का दरवाजा दिखा दिया। अब मैं अपने कमरे में आया, सारी रात में सोचता रहा कि मैं इमाम अहमद बिन हम्बल से कैसे इल्म हासिल कर सकता हूँ, कभी कोई ट्रीप कभी कोई तरकीब, मगर जहन में ये बात आती कि अगर मैं रोज़ाना जाऊँगा तो इमाम साहब अव्वल तो पढ़ाएंगे नहीं, और अगर पढ़ा भी देंगे तो पुलिस को पता चल गया तो फिर मैं भी जेल में। अगले दिन मैं सुबह उठा तो मैंने अपने गुठले को कपड़े से बांध लिया ताकि देखने वाले को पता चले कि कोई जख्म है जिसकी वजह से इसने घुटना बांधा हुआ है, और मैंने एक साइल की शक्ल इख्तियार कर ली, हाथ में कटोरी पकड़ ली और जैसे सवाली सवाल करता हुआ जा रहा होता है, मैंने वो शक्ल अपना ली, वो भेस अपना लिया और बाजार में मांगना शुरू कर दिया। अब लोग मेरी शक्ल को देखते तो मैं 20 साल का नौजवान था और वैसे देखते तो मैं लोगों से सवाल कर रहा था। उस जमाने में जो साहिल थे वो रुपया पैसा रोटी नहीं मांगा करते थे, हाथ फैलाकर बस इतना कहते थे अजरकुम अल्लाह अजरकुम अल्लाह, और लोग समझ लेते थे कि ये हाजतमंद है तो वो कशकोल में कुछ ना कुछ डाल देते थे। कहते हैं कि अब मेरे नौजवान चेहरे को देख के मुझे कोई कुछ देने को तैयार नहीं था, बल्कि कुछ लोग मुझे घूर के देखते कि तुम्हें शर्म नहीं आती इतनी जवानी में तुम सवाल करते फिरते हो। मैं उन लोगों की घूरी हुई नजरों को बर्दाश्त करता, जिल्लत को बर्दाश्त करता और बाजार में मांगता हुआ चला जाता। फिर ऐसे वक्त में जब लोगों की आमदरफ्त कम होती है, मैं इमाम अहमद बिन हम्बल की गली में दाखिल हुआ और मैंने इमाम अहमद बिन हम्बल के दरवाजे पर जाके बड़ी दर्दनाक आवाज से सजा लगाई, अजरकुम अल्लाह अजरकुम अल्लाह। मेरी आवाज में इतना दर्द था कि इमाम साहब समझ गए कि ये बहुत कोई जरूरतमंद हाजतमंद है। तो इमाम साहब ने अपने घर का दरवाजा खोला और उनके हाथ में कुछ पैसे थे, सिक्के थे, जो वो मुझे देना चाहते थे। बकीउद्दीन फरमाते हैं कि मैं इमाम साहब के करीब गया और मैंने जाकर कहा कि हजरत मैं माल का तलबगार नहीं हूं, मैं इल्म का तलबगार हूं और मैंने तो आप तक रसाई हासिल करने के लिए ये भिखारी का भेष अपनाया है, वरना तो मैं सुन्नत का मुतलाशी हूं, मुझे आप रोजाना पढ़ा दिया करें। इमाम अहमद नंबल ने फरमाया कि ना भाई ना, चले जाओ यहां से, अगर पुलिस ने देख लिया तो तुम्हें भी सजा मिलेगी मुझे भी सजा मिलेगी। तो मैंने कहा कि हजरत मैं इस तरह भिखारी की शक्ल में रोजाना एक वक्त आपके पास आऊंगा और आप यही सिक्के लेकर दरवाजा खोला करना, अगर कोई और बंदा करीब है तो सिक्के डाल देना और मैं चला जाऊंगा, और कोई बंदा नहीं है तो आप मुझे खड़े खड़े एक दो हदीसें सुना देना, मैं उनको जबानी याद कर लिया करूंगा, मेरा और आपका पढ़ने पढ़ाने का यही तरीका रहेगा। पूरा एक साल में बगदाद की गलियों में भीख मांगने के बहाने इमाम अहमद बिन हम्बल से चंद हदीसें रोजाना सुना करता था और याद कर लिया करता था। अल्लाह की शान देखें, एक साल के बाद हाकिम वक्त मर गया, जो नया हाकिम वक्त बना उसको इमाम अहमद बिन हम्बल से अकीदत थी, उसने नजरबंदी भी खत्म कर दी और इमाम अहमद बिन हम्बल का जो दर्स हदीस होता था ना मस्जिद में, जामे मस्जिद में, वो भी शुरू करवा दिया। बकीउद्दीन कहते हैं कि असर के बाद में जामे मस्जिद में गया तो इतना रश था जगह ही नहीं मिलती थी। बड़ी कोशिश के बावजूद मैं इमाम अहमद बिन हम्बल के करीब तो न पहुंच सका, बस जरा दूर खड़ा हो गया। तो इमाम साहब की नजर मुझ पर पड़ी तो इमाम साहब ने मजमे को कहा, ऐ मजमे के लोगों, इस नौजवान को मेरे पास आने दो, इल्म का असल तलबगार तो ये है। अब आप अंदाजा लगाइए कैसे तलबा थे जो इल्म हासिल करने के लिए भीख मांगने का भेष अपनाया करते थे और फिर उस्ताद से पढ़ा करते थे। अजीज तलबा, अल्लाह ने हर बंदे के सामने कुछ ना कुछ रख दिया है, हर बंदे के सामने, किसी के सामने अल्लाह ने कपड़े को रख दिया है, कपड़े को काटता है फिर उसको आपस में सीता है, हम उसको दर्जी कहते हैं। किसी के सामने अल्लाह ने लकड़ी को रख दिया है, वो लकड़ी को काटता है आपस में जोड़कर फर्नीचर बनाते हैं, हम उसे कारपेंटर कहते हैं। किसी के सामने अल्लाह ने ईंट और पत्थर को रख दिया है, वो पत्थरों को जोड़ता चला जाता है, दीवार बनती है, हम उसको मेसन कहते हैं। किसी के सामने अल्लाह ने लोहे को रख दिया है, वो लोहे के पुर्जे खोलता है और दोबारा उनको फिर कस देता है, उसको मकैनिक कहते हैं। तो किसी के सामने अल्लाह ने कपड़ा रखा, किसी के सामने लकड़ी रखी, किसी के सामने पत्थर रखा, किसी के सामने लोहा रखा। आप वो खुशनसीब नौजवान हैं कि आपके सामने अल्लाह ने अपने कुरान को और महबूब के फरमान को रख दिया। आप रोज़ाना सुबह उठते हैं अपनी गोद में कुरान मजीद या नबी रिसाम के फरमान को लेकर बैठते हैं और अपने उस्ताद के सामने पढ़ने के लिए हाजिर होते हैं। ये आपकी खुशनसीबी है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला पूछेंगे इल्म के तलबगार कहाँ हैं, तो जहाँ असहाबे सुफ़ा खड़े होंगे, आइम्मा फुकहा खड़े होंगे और बड़े बड़े मुहद्दिसीन खड़े होंगे, वहाँ बकीउद्दीन इब्ने मुखल्लद भी खड़े होंगे। अल्लाह मैंने इल्म हासिल करने के लिए भीख मांगी थी एक साल, और वहीं पे आप तलवा भी अल्लाह के सामने खड़े होंगे और आप अल्लाह के सामने ये अर्ज करेंगे, या अल्लाह तेरे काबे को जमीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने। ये ऐसा वक्त है कि हर बच्चा कॉलेज यूनिवर्सिटी भागने के लिए तरस रहा होता है। अब इसमें वो नौजवान जो दीन पढ़ने के लिए अपनी जिंदगी के वक्त को वक्फ कर दें और मस्जिद में अपना वक्त गुजारें, ये खुशनसीब लोग हैं। अल्लाह ताला क़यामत के दिन इनकी बहुत इज्जत अफजाई फरमाएंगे। चुनांचे इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते थे कि अल्लाह ताला का फरिश्ता क़यामत के दिन ऐलान करेगा, उलमा कहाँ हैं, उलमा कहाँ हैं। तो उम्मत के जितने भी उलमा होंगे, मुहद्दिसीन फुकहा, सब खड़े हो जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाएंगे मेरे अर्श के करीब हो जाओ। ये खरबों खरबों लोग होंगे जो अर्श के करीब हो जाएंगे, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि ऐ मेरे उलमा, या माशर उलमा, लम अदा इल्मी ले उअज़्ज़िबकुम, मैंने तुम्हारे सीने में जो इल्म को भरा था वो इसलिए नहीं भरा था कि आज मैं तुम्हें उसके ऊपर शर्मिंदा करूँ या अजाब दूँ, जाओ तुम्हारा हिसाब लेते मुझे शर्म आती है, तुम बिला हिसाब जन्नत चले जाओ। उस दिन पता चलेगा कि हमने अल्लाह के साथ कितना नफे का सौदा किया था। अल्लाह ताला हमें पूरी जिंदगी तालिबे इल्म बनकर रहने की तौफीक अता फरमाए और क़यामत के दिन तुलबा की कतार में हमें खड़ा फरमाए। वआखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। www.darsequran.com